చైతన్య మహాప్రభు చే బృందావన యాత్ర జార్ఖండ్ జంగల్ మే కిస్ ప్రకార చైతన్య మహాప్రభు నే జంగల్ కే పశు పక్షియో కో యహాన్ తక్ కి వృక్ష లతాం కో భీ కృష్ణ ప్రేమ మే ఉద్భుత కియా థా ఉస్కే సంబంధ మే సున్ రహే థే. చైతన్య మహాప్రభు కే ముఖారవింద్ సే హరినామ సంకీర్తన్ సున్కర్ యహాన్ తక్ కి జంగల్ కే వృక్ష లతా భీ పల్లవిత హో ఉఠే, ఉల్లసిత హో ఉఠే. ఔర్ ఇస్ ప్రకార చైతన్య మహాప్రభు నే మనుష్యం కే అతిరిక్త పశు పక్షి ఔర్ వృక్ష లతాఓ కో భీ కృష్ణ ప్రేమ మే ఉద్భుత కియా. ఏ భగవాన్ కీ మహావదాన్యతా హై. జో భగవాన్ ఇస్ ధర్తీ పర్ అవతరిత హోతే హై జీవో కే కళ్యాణ్ కే లియే, తో ఇస్ కలియుగ్ మే హరినామ సంకీర్తన్ కే మాధ్యమ్ సే వో కేవల్ మనుష్యో కో నహీ పశు పక్షి వృక్ష లతాఓ కో భీ ఉద్ధార్ కర్తే హై. తో ఝరీఖండ స్థావర సంగమ ఆచే జత కృష్ణ నామ దియా కైల ప్రేమేతే ఉన్మత్. ఇస్ ఝరీఖండ జంగల్ మే జితనే స్థావర ఔర్ జంగమ్ ప్రాణీ థే, అర్థాత్ జో చల్ సక్తే థే ఔర్ జో నహీ చల్ సక్తే థే, స్థిర రహతే థే వృక్ష లతా, ఇన్ సబ్ కో కృష్ణ నామ ప్రదాన కర్కే ప్రేమ మే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు నే ఉన్మత్త కియా. జై గ్రామ దియా జా జహా కరే న స్థితి శేష గ్రామేర లోకేర హై ప్రేమ భక్తి. తో ఇస్ ప్రకార మార్గ మే జాతే హుయే జబ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు జిస్ గ్రామ మే రుకతే థే ఔర్ జిస్ గ్రామ మే హోకర్ జాతే థే తో ఉస్ గ్రామ కే సారే లోగ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు కీ కృపా సే ప్రేమ భక్తి కో ప్రాప్త హో జాతే థే. तो ये किस प्रकार संभव होता था कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो उस समय कोई भी व्यक्ति उनसे ये हरे कृष्ण महामंत्र का श्रवण करता तो वो पवित्र हो जाता और कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता, और जो उसको गान करता वो भी कृष्ण प्रेम को प्राप्त करता, और जब चैतन्य महाप्रभु उस ग्राम को छोड़कर आगे निकल जाते तो जो लोग चैतन्य महाप्रभु से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुने हैं और कीर्तन कर रहे हैं उनसे जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति सुनता वो भी कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता. इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा हर व्यक्ति पर, ये हर व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा ये प्राप्त कर रहे थे. केहा जदि तार मुखे सुने कृष्ण नाम, तार मुखे आनु सुने तार मुखे आ. तो यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के मुख से कृष्ण का नाम श्रवण करता था और उसके मुख से दूसरा व्यक्ति श्रवण करता था और उसके मुख से फिर तीसरा व्यक्ति श्रवण करता था, तो इस प्रकार सबे कृष्ण हरि बोली नाचे कांदे हंसे, तो सब लोग कृष्ण प्रेम में उद्भुत हो जाते. यही परंपरा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे और कृष्ण प्रेम में नृत्य करते थे तो उनसे ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन श्रवण करते हुए दूसरा व्यक्ति भी कृष्ण प्रेम में उद्भुत होता था और उस दूसरे व्यक्ति से तीसरा व्यक्ति जब श्रवण करता था वो भी कृष्ण प्रेम में उद्भुत होता और तीसरे व्यक्ति से चौथा व्यक्ति श्रवण करता था वो भी कृष्ण प्रेम में उद्भुत हो जाता. तो इस प्रकार ये परंपरा से ये हरिनाम कीर्तन और ये कृष्ण प्रेम को लोग प्राप्त हो रहे थे. तो उसी प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु ने इस हरे कृष्ण महामंत्र का प्रवर्तन किया, यद्यपि आज चैतन्य महाप्रभु को हम देख नहीं सकते, केवल भाग्यवान व्यक्ति ही देख सकते हैं. अद्यापि यह सही लीला करे गौर राय, कह भाग्यवान दिखवारे पार. यद्यपि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला अभी चल रही है अपने नवद्वीप धाम में, किंतु भाग्यवान व्यक्ति ही उनका दर्शन कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी पे आते जाते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रसार है वे मरो नाम, तो उनका नाम समग्र पृथ्वी में जितने नगर और ग्राम है वहाँ पर उनके नाम प्रसारित होंगे, तो आज वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। समग्र विश्व में, विश्व के कोने कोने में, प्रति ग्राम और शहर में इस कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम और हरे कृष्ण महामंत्र का नाम कीर्तित हो रहा है। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र के कीर्तन करने से पहले श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों के नाम का जो मंत्र है पंचतत्व महामंत्र, उसका भी कीर्तन करना चाहिए, तब ये महामंत्र उपयुक्त फल प्रदान करने में समर्थ होता है। अर्थात चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमें पहले प्राप्त होती है और उनकी कृपा से हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण करते हुए सारे संसार में लोग इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो रहे हैं, किंतु इस हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन निरपराध भाव से करना चाहिए। ये महामंत्र के कीर्तन के कुछ अपराध हैं, यदि व्यक्ति निरपराध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो जाता है तुरंत, अन्यथा उसको समय लगता है। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है किंतु निरपराध नहीं करता है, अपराध से मुक्त होकर नहीं करता है, तो उसको समय लगता है कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु को जो दर्शन कर रहे थे और जो लोग उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन श्रवण कर रहे थे और उनसे जो दूसरे लोग श्रवण कर रहे थे, ये सारे लोग सवे कृष्ण हरि बलि नाचे खाते हासे, सारे लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का कीर्तन करते थे तो कोई नृत्य करने लगता था, कोई हंसने लगता था और कोई रोने लगता था। इस हरे कृष्ण महामंत्र का ये फल कि व्यक्ति जब कृष्ण प्रेम में आविष्ट हो जाता है तो कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नृत्य करने लगता है, ये उसका स्वाभाविक विकार उसके शरीर में परिवर्तन परिलक्षित होता है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए भक्त लोग कैसे नाचते हैं, ये कोई बनावटी नृत्य नहीं है, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से हृदय शुद्ध हो जाता है और हृदय में ये कृष्ण प्रेम उद्बुद्ध होता है, कृष्ण प्रेम से व्यक्ति प्रेरित होकर नृत्य करने लगता है, अपने आप के पैर उछलने लगते हैं। कोई व्यक्ति बिना हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए इस प्रकार का नृत्य नहीं कर सकता। कभी कभी लोग प्रयत्न करते हैं फिर भी नृत्य नहीं करते, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से व्यक्ति इस प्रकार नृत्य करने में समर्थ हो सकता है। तो ये नाचे कांदे हासे परंपरा है वैष्णव हैल सर्वदेश, तो इस प्रकार परंपरा से हरे कृष्ण महामंत्र को प्राप्त करके सारा देश वैष्णव हो गया। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जिस मार्ग पर गए और उस मार्ग पर जितने लोग उनके संपर्क में आए और जो संपर्क में नहीं आए किंतु संपर्क में आने वाले लोगों के संपर्क में आए, ये सारे लोग संग वैष्णव हो गए अर्थात भगवान कृष्ण के भक्त हो गए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उनकी वृंदावन यात्रा के मार्ग पर जितने भी ग्राम जितने भी नगर आते थे और वहां के लोगों को इस प्रकार वैष्णव बना देते, उनको कृष्ण का भक्त बना देते थे। यद्यपि प्रभु लोक संघ तेरा त्रास प्रेम गुप्त करे न बाहर ना प्रकाश। जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार उनके प्रचार अभियान में निकले थे वृंदावन यात्रा के बहाने, तो यद्यपि वो स्वयं कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो रहे थे, फिर भी वो इस प्रेम का प्रकाश बाह्य रूप से नहीं करते थे। उसका कारण था कि चैतन्य महाप्रभु देख चुके थे जब कभी वो अपने प्रेम को प्रकाशित करते थे तो बहुत सारे लोग आकर इकट्ठे हो जाते थे, एकत्रित हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु के पास और उनके साथ चलने लगते। तो चैतन्य महाप्रभु को ये डर था, भय था कि यदि वो अपना बाह्य प्रेम प्रकाशित करेंगे तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। इसलिए भीड़ से डर कर चैतन्य महाप्रभु अपने प्रेम को बाह्य रूप से प्रकाशित नहीं करते, उसको गुप्त रखते थे अपने प्रेम कृष्ण प्रेम में। प्रेम गुप्त करे ना बाहर ना प्रकाश। तथापि तार दर्शन सबन प्रभाव सकल देकर लोक हिल वैष्णव। किन्तु यद्यपि चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण प्रेम को बाह्य रूप से प्रकाशित नहीं करते थे, अपने अंतर में उसका अनुभव करते थे, किंतु वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान कृष्ण के दर्शन श्रवण मात्र से लोग कृष्ण प्रेम में उद्बुद्ध हो जाते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने समस्त लोगों को वैष्णव या कृष्ण भक्त बना दिया। यही चैतन्य महाप्रभु की महाभजन्यता। अन्य अवतारों में भगवान इस प्रकार मुक्त रूप से कृष्ण प्रेम को नहीं बांधते, नहीं देते। इसलिए कहा है कि अनर्पित तरिन चीरा करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्जवल रसम स्वभक्ति प्रियम। तो अन्य अवतारों में भगवान ने इस प्रकार कृष्ण प्रेम हर किसी को उन्होंने प्रदान नहीं किया, किंतु ये चैतन्य अवतार में भगवान ने ये कृष्ण प्रेम को हर किसी को उन्होंने प्रदान किया। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन इस कृष्ण प्रेम को प्राप्त होने योग्य है और कौन अयोग्य। उत्तम अधम किछु न वांछिल। ये अधम उत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये सब नहीं देखा, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, इस प्रकार उन्होंने नहीं देखा। हर किसी को उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया, यही उनकी महाभजन्यता है। जिस प्रकार भगवत गीता में हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, तब मैं तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर दूं। तो भगवान श्री कृष्ण एक शर्त रख देते हैं कि मेरी शरण में आओ तब मैं तुम्हारे पापों को नष्ट करूं, किंतु चैतन्य महाप्रभु की कोई शर्त नहीं। तो हर कोई इस हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन मात्र से कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कलयुग के लोगों के ऊपर और विशेष रूप से इसी कलयुग के लोगों के ऊपर, क्योंकि हर कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नहीं आते। जिस द्वापर में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं ठीक उस द्वापर के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अवतरित होते हैं। इसलिए इस कलयुग के लोग भाग्यशाली है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको प्राप्त। किंतु एकमात्र कलयुग के लोगों को एकमात्र यही करना कि जय श्री कृष्ण चैतन्य ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೇಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರವಭಕ್ತರು, ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಕುಲೋಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನಾಮ ಕಾ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನಾ ಇತನಾ ಹೀ ಕರ್ನಾ ಇತನಾ ಕರ್ನೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಇಸ್ಲೇ ಹಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀರ್ತನ ಪಹಲೆ ಈ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಜೋ ಮಂತ್ರ ಹೇ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೇಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರವಭಕ್ತವೃಂದ ಇಸ್ಕಾ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತ ಇಸ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ನೆ ಹಮ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಿ ಕೃಪಾ ಕಿ ಭಿಕ್ಷಾ ಕರ್ತ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ ಜಬ್ ಹಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕಾ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತ ಹೇ ತೋ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಅಪರಾಧ ಹೋತಾ ಹೇ ವೋ ಸಬ್ ಕ್ಷಾಲನ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ವೋ ನಷ್ಟ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೇ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಾರೇ ಅಪರಾಧೋ ನಷ್ಟ ಕರ್ತಾ तो ये चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है और महावदान्यता है। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने समग्र भारत में भ्रमण करते हुए इस कृष्ण प्रेम को प्रदान किया था, सारे लोगों को वैष्णव बना दिए थे चैतन्य महाप्रभु। गौड़ा बंगा उत्कला दक्षिण देश गया लोकेरा निस्तार कैलो आपने भ्रमिया। तो स्वयं संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु स्वयं भ्रमण करते रहे समग्र भारत और गौड़ देश बंगाल उत्कल दक्षिण देश ये चारों ओर भ्रमण करके चैतन्य महाप्रभु ने सारे लोगों को उद्धार किया, सारे लोगों का उद्धार किया चैतन्य महाप्रभु, उनको कृष्ण का भक्त बनाया, वैष्णव बनाया, इस प्रकार उनका उद्धार किया। ಮಥುರಾ ಐವಾರ ಛಲೆ ಆಸನಧಾರಿ ಖಂಡೆ ಖಂಡ ಭಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಲೋಕ ತಹಾ ಪರಮ ಪಾಖಂಡ ತ ಮಥುರಾ ಅನೇಕ ಬಹಾನೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಝಾರ್ಖಂಡ್ ಜಂಗಲ್ ಹೋಕರ ಆ ರೇ ತೋ ಜಂಗಲ್ ಭಿಲ್ಲ ಲೋಕ ನಿವಾಸ ಜೋ ಪರಮ ಪಾಖಂಡ ಅರ್ಥಾತ್ ಪಾಪಾಚಾರಿ शूद्रों से भी नीच थे ये भिल्ल जाति के लोग और विभिन्न प्रकार के पापाचारण करते थे। जैसे जो नीच जाति के लोग होते हैं ये अधिकतर पाप कर्म में लिप्त रहते हैं और ये भिल्ल जाति के लोग परम पापी थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने इनका भी उद्धार किया। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है या ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है और ये शूद्र से भी नीच है, चंडाल है, ये नहीं देखते, क्योंकि भगवान सबके होते हैं। ये नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के होते हैं, शूद्र के नहीं होते, या पुरुष के होते हैं, स्त्रियों के नहीं होते हैं, या भारत के लोगों के होते हैं, विदेशी लोगों के नहीं होते, क्योंकि भगवान एक है और सारे जीव प्राणी सब उनकी संतान है। इसलिए भगवान की कृपा सबके ऊपर संभाव से ये कृपा सबको प्राप्त होती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबके लिए इस कृष्ण प्रेम को प्रदान किया। यहाँ तक कि भिल जाति के लोग जो जंगल में रहते थे, वो पापाचरण करते थे, उनको भी उन्होंने ये कृष्ण प्रेम प्रदान किया और इस प्रकार उनका भी उद्धार किया। नामा प्रेम दिया कैला सवार निस्तर चैतन्य गुढ़ लीला गुजित शक्ति का। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की गुढ़ लीला को कौन समझ सकता है, जो वृंदावन जाने के बहाने ये मार्ग में जो भील जाति के लोगों का उद्धार किया और केवल उनका नहीं, मार्ग में जितने भी ग्राम के लोग आए, नगर के लोग आए, सबका उन्होंने नाम प्रेम देकर उनका उद्धार किया। अर्थात नाम संकीर्तन के माध्यम से उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु युग धर्म का प्रचार करते हुए ये ब्रह्मा और दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाता। तो ब्रह्मा को जो प्रेम दुर्लभ है, कृष्ण प्रेम, तो उस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु सबको दे रहे हैं, बांट रहे हैं, जैसे लोग बांटते हैं, विचार नहीं करते कौन लेने योग्य कौन लेने योग्य नहीं है, उसी प्रकार ये कृष्ण प्रेम जो दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, उस प्रेम को चैतन्य महाप्रभु बांट रहे हैं सब लोग। बना देखी भ्रम है यही वृंदावन। और जब वन पथ में चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो उस झारखंड जंगल को देखकर उनको वृंदावन का भ्रम हो रहा था, और क्योंकि वृंदावन भाव में थे चैतन्य महाप्रभु और स्वयं कृष्ण का विरह अनुभव कर रहे थे, इसलिए जैसे ही जंगल को देखते थे उनको लगता था कि जैसे वृंदावन। और शैलज की मन है यही गोवर्धन। और यदि कहीं कोई पर्वत देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि ये गोवर्धन पर्वत, जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने उठाया धारण किया, इसलिए उनका नाम पड़ा गोवर्धन धारी या गिरिराज धरण, गिरिराज पर्वत को उन्होंने उठाया। तो कोई भी पर्वत को देखते थे चैतन्य महाप्रभु उनको ये भ्रम होता था कि ये गोवर्धन, वृंदावन भाव में रहने के कारण ये वृंदावन का भ्रम उत्पन्न होता था उनके मन में। जहां नदी देखे तहां माने कालिंदी, और जहां कहीं वो किसी नदी को देखते थे तो मानते थे कि ये यमुना है। महाप्रेमावेश नाचे प्रभु पड़े कांति, इस प्रकार महाप्रेम में आविष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु कभी नृत्य करते थे, कभी हंसने लगते थे और कभी रोने लगते थे और कभी नीचे गिर पड़ते थे। इस प्रकार भावावेश में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर यात्रा करते थे। तो पथे दायित्री भट्टाचार्य साका मूल स्थल जहां से पाए न तहां लय न सका। तो जब वन मार्ग में जा रहे हैं तो कभी कोई ग्राम पड़ता था तो लोग उनको निमंत्रण देते थे प्रसाद के लिए, भोजन के लिए, किंतु जंगल में कोई नहीं होता था चैतन्य महाप्रभु को भोजन के लिए निमंत्रण देने के लिए। तो उनका जो सेवक था भट्टाचार्य बलभद्र भट्टाचार्य, वो जंगल में जो फल मूल मिलता था, साग मिलता था, उसको सब वो संग्रह कर लेते और उसको लेकर वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाते। पथे दायित्व भट्टाचार्य साका मूल फल जहां दे पाए न तहां लय न सकल, जे ग्राम में रहे न प्रभु तथा है ब्राह्मण पांच सात दोनों करे निमंत्रण। और यदि रास्ते में मार्ग में कोई ग्राम आता था तो चैतन्य महाप्रभु उस ग्राम में रुकते थे, तो उस ग्राम में जो ब्राह्मण होते थे तो वे लोग आकर चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण करते थे भोजन के लिए। तो ये प्राचीन पद्धति है कि प्राचीन काल में जब साधु लोग भ्रमण करते थे, एक ग्राम से दूसरे ग्राम में जाते थे, तो वो किससे मांगने नहीं जाते थे, किसी स्थान पर बैठते थे, तो ग्राम के जो ब्राह्मण जाति के लोग होते थे वो आकर उनको निमंत्रित करते थे, अपने घर पर बुलाते थे भोजन के लिए। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण लोग होते थे ये लोग तो भगवान विष्णु के ही भक्त होते थे, भगवान विष्णु कृष्ण के भक्त होते थे। हर ब्राह्मण के घर पर सालग्राम शिला रहती थी, तो हर ब्राह्मण के घर में कम से कम यदि लक्ष्मी नारायण या राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं होती थी, कम से कम हर ब्राह्मण इस सालग्राम शिला रखता था। जो सालग्राम शिला नारायण शिला है उनकी पूजा की जाती है, तो इस सालग्राम शिला कम से कम ब्राह्मणों के घर में होते थे। इसलिए ब्राह्मण लोग भोजन बना करके भगवान को भोग अर्पित करके प्रसाद के रूप में साधु संतों को अर्पित करते थे और स्वयं भोजन करते थे। ये ब्राह्मण लोग मछली मांस नहीं खाते या प्याज लहसुन भी नहीं खाते, और भगवान के भक्त थे और उनकी पूजा करते थे, इसलिए ये शुद्ध पवित्र रहते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण लोग जब किसी साधु को बुलाते हैं तो उनके घर में खाने के लिए साधु लोग कोई संकोच नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि इनके घर में मुझे हमें भगवान का प्रसाद मिले। किंतु आजकल ब्राह्मण लोग भ्रष्ट हो गए, ब्राह्मण लोग भी मांस मछली खाने लगे हैं, प्याज लहसुन खाने लगे हैं और भगवान के भक्त भी नहीं रहे, वैष्णव नहीं रहे, भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा भी नहीं करते हैं या उनको भोग भी नहीं लगाते हैं। तो इसलिए ऐसे ब्राह्मणों के घर पर साधु संत भोजन नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि ये लोग ठीक नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इसलिए वहां पर नहीं जाते हैं भोजन करने के लिए। किंतु जो ब्राह्मण लोग शुद्ध पवित्र हैं और शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं और स्वयं भगवान के भक्त हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा करते हैं, उनके घर में भोजन करने के लिए साधु लोग संकोच नहीं करते। तो प्राचीन काल में ऐसे ब्राह्मण लोग थे जो ये नियम का पालन कड़ाई के साथ करते थे और स्वयं विष्णु कृष्ण की उपासना करते थे। इसलिए ये लोग चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण देते थे भोजन के लिए, तो प्रतिदिन 5-7 घरों से निमंत्रण आता था चैतन्य महाप्रभु भोजन करने के लिए। तो वस्तुतः शास्त्र में ये बताया गया है कि केवल कोई ब्राह्मण घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता या जाति से ब्राह्मण नहीं होता, जब तक वो कर्म में ब्राह्मण नहीं। ये शास्त्र में बताया गया है कि जन्मनां जायते शूद्र, तो जन्म से सब लोग शूद्र होते हैं, किंतु संस्कारात भवेत द्विजः, किंतु संस्कार से व्यक्ति द्विज बनता है, उसका दोबारा जन्म होता है, ये ब्राह्मण संस्कार उसको प्राप्त होता है, तो उसको द्विज कहा जाता है। जब उपनयन संस्कार होता है तो उसको द्विज कहा जाता है। और वेद पाठात भवेत विप्र, तो जब वो व्यक्ति का उपनयन संस्कार होता है और उसके पश्चात वो शास्त्रों का अध्ययन करने लगता है तो उसको विप्र कहा जाता है। पहले उपनयन संस्कार से द्विज बनता है और शास्त्रों के अध्ययन वेद पाठ शास्त्रों के अध्ययन से विप्र बनता है, किंतु ब्राह्मण तब बनता है जब वो ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जानता है, भगवान को जानता है, भगवान का उपासक बनता है, उनका भक्त बनता है, तब वो ब्राह्मण पदवाच्य होता है। तो इस प्रकार प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग कड़ाई के साथ पालन करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार ब्राह्मणों के घर से भोजन के लिए निमंत्रण प्राप्त करते थे और केह अन्न आने दे भटाचत्य स्थान केह दुग्ध दधि केह दुग्ध खंड आहार। और यदि कोई इस प्रकार नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं करता था तो वो अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को नहीं बुलाता था, क्योंकि वो जानता था कि महाप्रभु नहीं आएंगे उसके घर में भोजन करने के लिए, क्योंकि वो शुद्ध पवित्र नहीं है और नियम का पालन नहीं कर रहा है, घर पर भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर रहा है, भगवान को भोग अर्पित नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार के लोग चैतन्य महाप्रभु का जो सेवक था बलभद्र भट्टाचार्य, उनके पास लाकर चावल दाल सब्जियां ये सब घी ये सब दे जाते हैं, क्योंकि अपने घर पर नहीं बुला सकते, इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य के पास रखते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य इनका ये रंधन करके चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन प्रस्तुत करते हैं। इसलिए जो लोग शुद्ध पवित्र नहीं है और भगवान विष्णु या कृष्ण के उपासक नहीं है, उनको भोग नहीं लगाते हैं, तो ये घर पर चैतन्य महाप्रभु को नहीं बुलाते, तो उनके लिए ये दे जाते हैं बलभद्र भट्टाचार्य के पास। जहाँ विप्र नहीं तहाँ सूत्र महाजन आशीष वे भट्टाचार्य करे निमंत्रण। और जहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते थे जिस गांव में, तो वहाँ पर सूत्र महाजन होते थे। ये सूत्र महाजन उन लोगों को कहा जाता था जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं थे, किंतु ये लोग तो वैष्णव थे, अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त थे, वैष्णव धर्म का अनुसरण करते थे, सब सारे नीति नियम का पालन करते थे, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब नहीं खाते थे ये लोग, या कोई मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते थे। इस प्रकार ये चार नियम है वैष्णव लोगों के लिए, तो ये मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि का सेवन नहीं करते हैं, चाय पान बीड़ी सिगरेट कपड़ी गंजा भांग तंबाकू अफीम शराब ये सब मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करते हैं वैष्णव लोग, और अवैध पुरुष स्त्री संबंध नहीं रखते हैं यौन संबंध, और जुआ या द्वित क्रीड़ा में अंतग्रहण नहीं करते। तो ये चार नियम वैष्णव लोग कम से कम पालन करते हैं, तब जाकर कोई वैष्णव हो सकता या भगवान का भक्त बन सकता। जब तक आप इन चार नियमों का पालन नहीं करते हैं भगवान का भक्त नहीं बन सकता। इन नियमों का नियमों को पालन करने का अभ्यास कर सकते हैं और धीरे धीरे इस पापाचरण को छोड़ सकते हैं। तो जो वैष्णव लोग थे इन चार नियमों को कड़ाई के साथ पालन करते थे और भगवान विष्णु या कृष्ण के भक्त घर पर भगवान की पूजा करते थे, और जो भी खाते थे भगवान को भोग लगाकर खाते थे। ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि भुंजते थे त्वगं पापं जे पच्यन्ति आत्म कारणा। जो लोग केवल अपने जीवा स्वाद के लिए भोजन बनाते हैं किंतु भगवान कृष्ण को अर्पित नहीं करते हैं, तो ये लोग पापी भक्षण करते हैं। तो यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विल। यदि भगवान का प्रसाद व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु भगवान को भोग न लगाकर यहाँ तक कि कोई शाकाहारी भोजन भी करता है तो वो पाप नहीं खाता है। इसलिए हम जो कुछ भी खाते हैं भगवान को भोग लगाकर उनके प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए, किंतु हम भगवान को हर कोई चीज भोग लगा नहीं सकते। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन से भोग नहीं लगता, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं करते। तो भगवान जिस वस्तु को ग्रहण करते हैं उसी को भोग लगाना चाहिए, जो भगवान ग्रहण नहीं करते हैं उसको भोग नहीं लगाना चाहिए और न तो उसको खाना चाहिए, केवल भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना चाहिए। और उससे क्या होता है, व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर स्वस्थ रहता है, रोगों से भी मुक्त हो जाता है, बहुत सारे रोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग रोगी हैं क्योंकि वो क्या खाना है क्या पीना है नहीं जानते, इसलिए बहुत तरह तरह के रोग भोग करते हैं, क्योंकि उनके खाने पीने में ये लोग संयमित नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो जिह्वा को स्वाद लगा उसको खाने लगे लोग, और उसी से तरह तरह के रोगों को ये लोग निमंत्रित करते हैं, रोग भोग करते हैं, कष्ट भोग करते हैं। पहले तो जीवा के स्वाद के लिए खा लिया और बाद में कष्ट भोग कर रोग के माध्यम से, तो जीवा पर जिसका नियंत्रण नहीं है वो कष्ट ही भोग करेगा, ये स्वाभाविक है। रोग के मामले में। इसलिए अच्छा है यदि हम शाकाहारी भोजन करते हैं और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते हैं नित्य प्रति, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, रोगों से मुक्त रहेगा और मन भी पवित्र रहेगा, शुद्ध रहेगा, जिससे हम भगवान के संबंध में चिंतन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में हमारी रुचि उत्पन्न हो और हम पापों से भी मुक्त हों भगवान का प्रसाद सेवन करने से। तो हर तरह से लाभ है, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है और भगवान को भोजन भोग नहीं लगाते हैं, जीवा के स्वास्थ्य के लिए भक्षण करते हैं, उन लोगों को कष्ट ही कष्ट प्राप्त होता है। तो ये जो शूद्र महाजन है, ये सब वैष्णव गांव में, ये ब्राह्मण परिवार के नहीं थे, किंतु भगवान के भक्त, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करते थे, घर में भगवान की मूर्ति रखते थे और उनकी पूजा करते थे, भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण, सीताराम या राधा कृष्ण, इनकी मूर्ति रखते थे और रोज भोग लगाकर भोजन करते थे, प्रसाद ग्रहण करते। तो ऐसे लोगों के घर में वैष्णव लोग, साधु संत लोग भजन कर सकते, क्योंकि वहां पर भगवान का प्रसाद उपलब्ध है। तो जिस ग्राम में ब्राह्मण लोग नहीं होते थे, उस ग्राम में वैष्णव लोग होते थे, तो ये लोग चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित करते थे भोजन के लिए। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उनके घर में भोजन करते थे और इस प्रकार वो वृंदावन के पथ में लोगों पर कृपा करते थे, उनके घर में भोजन करके उन पर वस्तु कृपा ही करते। जिसके घर में साधु संत नहीं आ पाते हैं क्योंकि वो लोग योग्य नहीं है, तो उनका जीवन धारण करना व्यर्थ है। तो हमें इस प्रकार जीवन धारण करना चाहिए जिससे कि हम योग्य बने, साधु संतों के घर पर बुलाएं, उनको भगवान का प्रसाद अर्पित करें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, भगवान भी प्रसन्न हो। भगवान वस्तुतः ब्राह्मण, वैष्णव और अग्नि, इनके मुख से भोजन करते हैं, तो जब इनको भोजन दिया जाता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कृपा करते हैं। तो इस प्रकार आशीष सर्वे भट्टाचार्य करे निमंत्रण, ये शूद्र महाजन ये चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रित कर रहे थे वैष्णवगण। भट्टाचार्य पाक करे वन्य व्यंजन, वन्य व्यंजन प्रभु आनंदित। और जहाँ पर कोई नहीं मिलता था, कोई ग्राम नहीं था मार्ग पर, तो जंगल से जो कुछ भी प्राप्त होता था, कंदमूल है, फल है जंगल का और साग सब्जियां हैं, तो इसी से बलभद्र भट्टाचार्य पाक करते थे, अर्थात रसोई करते थे, रंधन करते थे। और उसी को चैतन्य महाप्रभु को अर्पित करते थे और उसमें चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे। इस वन्य भोजन में चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने कृष्ण अवतार में ये वन में ही ग्वाल वालों के साथ भोजन करते थे और उसी में उनका आनंद। तो अब जब वन में इस प्रकार भोजन करते थे, वही कृष्ण लीला की बात उनको स्मरण हो रहा था और उसी में वो आनंद का अनुभव करते। दुई चारि दिन अन्न राखे न सहती, जहाँ शून्य वन लोकर नाहीं के बसती, तहाँ से ही अन्न भटा चर्च करे पाक, फल मूले व्यंजन करे वन्य नाना साग। तो जब चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार वृंदावन के मार्ग पर चल रहे हैं, तो कहीं पर कोई ग्राम नहीं है और वहां पर ये बलभद्र भट्टाचार्य थे, जो लोग उनको लाकर अन्न और साग सब्जियां देते थे रख लेते थे दो चार दिन के लिए। तो रास्ते में कोई गांव नहीं है, तो जो अन्न उनके पास संचित रहता था उसी से वो चैतन्य महाप्रभु के लिए भोजन बनाते थे, और रास्ते में कुछ साग सब्जियां मिल जाती थी उसको वो बनाते थे। परम संतोष प्रभुर वन्न भोजने महासुख पान जे दिन रहे न निश्चित। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु वन के वन की वस्तुओं से बने भोजन से बहुत संतुष्ट रहते हैं, और जिस दिन वो निर्जन में रहते थे उनको परम आनंद प्राप्त होता था। लोग चैतन्य महाप्रभु उसने भीड़ भाड़ उनको पसंद नहीं थी, यद्यपि प्रचार करने के लिए वो जाते थे, भ्रमण करते थे और लोगों की भीड़ एकत्रित होती थी, किंतु चैतन्य महाप्रभु इसी को अधिक पसंद करते थे जब वो निर्जन में रहते थे, क्योंकि निर्जन में रहने से वो भगवान का स्मरण करते थे। भट्टाचार्य जब सेवा करे स्नेह जैसे दास तार विप्र वह जल पात्र वही बात, तो ये बलभद्र भट्टाचार्य जो चैतन्य महाप्रभु के साथ चल रहे थे, ये एक सेवक की तरह चैतन्य महाप्रभु की हर तरह की सेवा करते थे। और बलभद्र भट्टाचार्य के साथ जो और एक विप्र था वो चैतन्य महाप्रभु का जल पात्र और उनका बहिर्वास उसको बहन करके साथ में चलता था। निर्जर से उसमें रखे स्नान तीन बार दुई संध्या अग्नि का तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय जा रहे थे वृंदावन उस समय ये ठंड का महीना शुरू नहीं हुआ था, लेकिन ये कार्तिक महीने में जाकर चैतन्य महाप्रभु पहुंचे थे वृंदावन, तो ये शरद काल में ये यात्रा कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जहाँ कहीं रास्ते में कोई निर्जर अर्थात झरना देखते थे तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर तीन बार स्नान करते थे, ये सन्यासी का नियम है। और चैतन्य महाप्रभु कठोरता के साथ ही सन्यास नियमों का पालन करते थे और सन्यासियों के लिए आदर्श प्रस्तुत करते थे। चैतन्य महाप्रभु जैसा सन्यासी सन्यास धर्म का पालन कोई नहीं कर सकता, इतनी कड़ाई के साथ चैतन्य महाप्रभु सन्यास धर्म का पालन करते थे कि उनके पास कोई स्त्री उनके पास नहीं आता, स्त्री लोग जो है वो बहुत दूर से उनको प्रणाम करते थे, उनके पास नहीं आते, ये इतने कठोरता के साथ सन्यास धर्म पालन करते थे। और दिन में तीन बार स्नान करते थे त्रिसंध्या में, प्रातः काल दोपहर के समय और संध्या के समय तीन बार स्नान करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु जब रास्ते में कोई झरना देखते थे तो वहां पर उसके उष्मा जल में झरना का जल उष्मा होता है तो उसमें स्नान करते थे। दुई संध्या अग्निताप काष्ठे रहा और दोनों सुबह और शाम दोनों समय ये लकड़ी जलाकर थोड़ा उत्ताप लेते थे और इस प्रकार निरंतर प्रेमावेश निर्जन गमन सुख अनुभवी प्रभु कहे न बचन। इस प्रकार आनंद मन में चैतन्य महाप्रभु जब निर्जन स्थान में जा रहे थे यात्रा कर रहे थे तो मन ही मन प्रसन्न होकर वो उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा, सुनो भट्टाचार्य अमी गेलाऊ बहु देर वन पथे दुखे न कहा नहीं पाई ले। तो उन्होंने कहा कि हे बलभद्र भट्टाचार्य हम इस वन पथ में बहुत दूर चले आए, वृंदावन की यात्रा के मार्ग पर वन पथ में बहुत दूर हो आए हैं किंतु कहीं भी मुझे कोई कष्ट अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि जंगल के पथ में जाने पर व्यक्ति को कष्ट होता है, खाना पीना नहीं मिलता है और जंगल में हिंसा यंत्र पशुओं का भय रहता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, कृष्ण कृपालु आमाए बहुत कृपा कैला बन पथे आनी आमाए बड़ा सुख दिला। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जब वो स्वयं कृष्ण है किंतु बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि कृष्ण बड़े कृपालु, उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ी कृपा की, इस वन पथ में मुझे लाकर भगवान कृष्ण ने मुझे बहुत आनंद प्रदान किया। तो कहते हैं कि पूर्वे वृंदावन जायते करिला विचार। इस बार इस वृंदावन यात्रा के पहले एक बार हमने वृंदावन जाने के लिए विचार किया, माता गंगा भक्त गणे देखियो एक बार, और उसके साथ साथ ये भी विचार हमारे मन में आया था कि मैं वृंदावन की यात्रा के मार्ग पर अपनी माता सती माता का दर्शन करूं और उसके साथ साथ गंगा का भी दर्शन करूं और भक्तगणों का दर्शन करूं। तो ये सोचकर भक्तगण संगे अवश्य करीब मिलन भक्तगण संगे लया जावो वृंदावन। तो मैं उस समय सोच रहा था कि इस प्रकार भक्तों से हमारी भेंट हो जाएगी और भक्तगणों को साथ में लेकर मैं वृंदावन की यात्रा करूं। इत भावी गौड़ वैसे करीलू गमन माता गंगा भक्त देखी सुखी है लमा। ये सोचकर मैं जगन्नाथपुरी से गौड़ देश में गया, बंगाल में गया, और वहां पर माता का दर्शन भी मुझे हो गया, भक्तों का दर्शन हुआ और गंगा का भी दर्शन हो गया। और इस प्रकार मैं आनंदित हुआ, मेरा मन सुखी हुआ। भक्त गणे लया सबे कलिलांग रंगे लक्ष कोटि लोक कहा हेला आमा संग। किंतु जब मैं भक्तगणों को साथ में लेकर वृंदावन की ओर चलने लगा तो हमारे साथ अपने कुछ भक्त थे, किंतु उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हो रास्ते में, और सब लोग वृंदावन जाने के लिए हमारे साथ चल पड़े। इस प्रकार लक्ष कोटि लोग कहाँ हेलो हमारे संग। तो लक्ष लक्ष लोग हमारे साथ करने लगे वृंदावन के लिए। सनातन मुखे कृष्ण आमा सिखाइला ताहा विघ्न करी बना पुछया। तो जब इस प्रकार मैं वृंदावन की यात्रा कर रहा था लक्ष कोटि लोगों के साथ, तो भगवान कृष्ण ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान की मार्ग पर, क्योंकि वृंदावन की यात्रा इस प्रकार नहीं करना चाहिए अनेक लोगों के साथ। वृंदावन की यात्रा या तो अकेले करना चाहिए या साथ में अधिक से अधिक एक दो व्यक्ति होना चाहिए। ये ग्रुप लेकर वृंदावन यात्रा नहीं करना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान। जब मैं लक्ष्य लोगों के साथ लक्ष्य कोटि लोगों के साथ वृंदावन की यात्रा कर रहा था, तो भगवान ने मुझे किस प्रकार शिक्षा प्रदान की, सनातन गोस्वामी के माध्यम से। ये नहीं है कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि इतने लोग लेकर वृंदावन मत जा, क्योंकि भगवान कभी कभी भक्तों को शिक्षा प्रदान करते हैं दूसरे भक्तों के माध्यम से, ये दूसरों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने मुझे ये शिक्षा प्रदान किसके माध्यम से की, सनातन गोस्वामी के माध्यम से। तो सनातन गोस्वामी ने मुझे शिक्षा प्रदान की, उन्होंने कहा कि इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन यात्रा करना ये ठीक नहीं। तो जब सनातन गोस्वामी ने इस प्रकार कहा तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए उनके बात कि इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन जाना उचित नहीं है। ये समझकर चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन यात्रा को वहीं बंद कर, वो आगे नहीं गए, वहीं से वो फिर लौट आए जगन्नाथ। तो उसी बात का स्मरण करते हुए चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य कहते हैं कि सनातन मुख्य कृष्ण हमें आमा सिखाएला, सनातन गोस्वामी के मुख से कृष्ण ने हमें शिक्षा दी और हमारी यात्रा में इस प्रकार विघ्न उत्पन्न हो गए, बाधा उत्पन्न हो गई। तो सनातन गोस्वामी ने जब इस प्रकार कहा तो मैंने सोचा कि ये वस्तुतः ठीक है, हमें इतने लोगों को साथ लेकर नहीं जाना चाहिए, तो मैं वहां से लौट रहा हूं। कृपार समुद्र दिने हिने दयामय कृष्ण कृपा बिना कोनो सुख नाही है। तो भगवान कृष्ण ये कृपा के समुद्र सागर और ये वस्तुतः दीनहीन व्यक्तियों पर कृपा करते ही। तो जो व्यक्ति दीनहीन भाव से कृष्ण की कृपा की आकांक्षा करता है तो भगवान कृष्ण अवश्य उस पर कृपा करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार है भगवान कृष्ण उस पर कृपा नहीं करते। जो अहंकार से मुक्त है भी नहीं निष्किंचन है उस पर भगवान कृष्ण कृपा करते। तो इसलिए बताया गया है कि ये अहंकार व्यक्ति में उत्पन्न तब होता है जब व्यक्ति उच्च कुल में जन्म ग्रहण करता है, धनी परिवार में जन्म ग्रहण करता है, उसके मन में अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा धनी घर का पुत्र हूँ या कन्या, धनी घर की संतान। तो जन्म ऐश्वर्य सुतस्त्री एधमान अधपुमान। तो व्यक्ति के अहंकार में तब वृद्धि होती है जब व्यक्ति उच्च कुल में या धनी परिवार में जन्म ग्रहण करता है तो उसके अहंकार में वृद्धि होती है। और ऐश्वर्य उच्च कुल में जन्म ग्रहण करना और ऐश्वर्य को प्राप्त करना, धन को प्राप्त होना, अधिक धन प्राप्त होने से मन में अहंकार उत्पन्न होता है कि मैं बहुत बड़ा धनशाली वित्तशाली व्यक्ति। श्रुत अर्थात यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा पंडित है, विद्वान है, उसके मन में गर्व अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान या पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ। और श्री अर्थात यदि कोई व्यक्ति सुंदर है तो उसके मन में भी अहंकार कि मैं बहुत बड़ा सुंदर सुंदर व्यक्ति। तो इस प्रकार के व्यक्ति विनीत होकर भगवान कृष्ण के पास निवेदन नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं कर सकते, उनमें विनम्रता नहीं आ सकती, निष्किंचन भाव नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना उनके लिए कठिन होता है। जब तक ये अहंकार दूरीभूत नहीं हो जाता हृदय से तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि त्वं अकिंचन गोत, कुंती देवी अपनी प्रार्थना में कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे प्रभु आप अकिंचन गोचर हैं, जो अकिंचन निष्किंचन विनीत लोग हैं उनके आप गोचरीभूत होते हैं, आप उन पर कृपा करते हैं, इसलिए आपका नाम दीन बंधु है, आप दीन वस्तव है, जो दीन जनों पर आप कृपा करते हैं, दीन गरीब निष्किंचन व्यक्ति पर आप कृपा करते हैं, किंतु जिसके मन में अहंकार है उस पर आप कृपा नहीं करते। इसलिए भगवान को अकिंचन गोचर कहा गया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण दीनहीन पर कृपा करते हैं, बहुत कृपामय है, कृपा के सागर है, और कृष्ण कृपा के बिना कोई सुखी नहीं होता। इस संसार में कृष्ण कृपा के बिना कोई सुखी नहीं होता। अब तो चैतन्य महाप्रभु मन में आनंद अनुभव करते हुए कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा के ही कारण मुझे इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जबकि वो स्वयं कृष्ण है किंतु भक्त का अभिनय कर रहे हैं। तो भक्त को ऐसा ही सोचना चाहिए, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु सोच रहे हैं उसी प्रकार कृष्ण के भक्तों को सोचना चाहिए कि उनको जो कुछ भी सुख प्राप्त है वो कृष्ण की कृपा के कारण ही प्राप्त होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने इस प्रकार कर्मी लोग सोचते हैं, हमने इतना परिश्रम किया, इतना धन कमाया, इसलिए हम सुखी हैं, इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए। ये कृष्ण की कृपा के कारण ही हमें धन प्राप्त होता है, कृष्ण की कृपा के कारण ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है, कृष्ण की कृपा के कारण ही हम सुंदर बनते हैं, या कृष्ण की कृपा के कारण ही हम ऐश्वर्यशाली होते हैं, या उच्च कुल में जन्म ग्रहण करते हैं, तो कृष्ण की कृपा है। इसलिए व्यक्ति कृष्ण के प्रति सदा सर्वदा अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहिए। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहते हुए हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान कृष्ण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना ये हर प्राणी का कर्तव्य है, विशेष रूप से मनुष्यों का कर्तव्य है। तब व्यक्ति सुखी हो सकता है जीवन का। कहे न तुम्हें कृष्ण तुम्हें दयामय अधम जीव मुई मोरे हैला सदय। तो जब चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं भट्टाचार्य आलिंगिया सहारे कहे, तो चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य का आलिंगन किया, उनको गोद में ले लिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारा प्रसाद हमें अति सुख पाएगा, कि तुम्हारे कारण मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, तुम यदि मेरे साथ नहीं आते। अपने सेवकों की सेवक की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, कहते हैं तुम यदि मेरी सेवा नहीं करते, मेरे साथ नहीं आते, तो मैं इतना सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु बलभद्र भट्टाचार्य का आलिंगन कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं। तो जब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने बलभद्र भट्टाचार्य से कहा और उनका आलिंगन किया, तो बलभद्र भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं तुम्हें कृष्ण तुम्हें दयामय। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण दयामय है इसलिए हमें सुख प्राप्त हो रहा है। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा कि आप तो स्वयं कृष्ण आप दयामय हैं, आप ही कृपा करने वाले हैं, और कैसे कृपा कर रहे हैं ना अधम जीवा मुई मोरे हैला सदय। तो बलभद्र भट्टाचार्य कह रहे हैं कि मैं बहुत अधम पतित जीव हूँ। ये भक्तों की नम्रता देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं ये कितने नम्र हैं। इनमें कहीं किसी भक्त में कोई अहंकार कभी भी दृष्टिगत नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जितने भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त हुए हैं ये सब इतने विनयी, और यही भक्तों की शोभा नम्र रहना, ये भक्तों का एक गुण है, बहुत बड़ा गुण है। भक्तों में अहंकार शोभा नहीं पाता और उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। भगवान भक्तों के अपराधों को तो सहन कर सकते हैं किंतु उनके अहंकार को सहन नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कभी कभी भक्तों को इस प्रकार की स्थिति में डालते हैं जिससे उनका अहंकार मिट जाए, अहंकार नष्ट हो जाए। जब भगवान भक्तों पर कृपा करते हैं उनके अहंकार को दूरीभूत कर देते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में डालते हैं। तो बलभद्र भट्टाचार्य कह रहे हैं आप कृष्ण हैं और आप बहुत कृपालु, आप यदि कृपालु नहीं होते तो मुझ जैसे अधम जीव पर आप कैसे कृपा करें। आपने कृपा की इसलिए आप मुझे साथ में लाए, यदि आप मना कर देते तो मैं कहाँ आपके साथ आता, कहाँ आपकी सेवा कर सकता। और आपकी सेवा करने का अर्थ है भगवान की सेवा करना, कृष्ण की सेवा करना। तो कृष्ण की सेवा को प्राप्त करना कृष्ण की कृपा के बिना ये संभव नहीं है। जब कृष्ण कृपा करते हैं तब कोई कृष्ण की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। मुई छार मोरे तुम्हें संगे लया आयला कृपा करी मोर हाथे प्रभु भिक्षा कर। तो कहते हैं कि मैं मेरी कोई योग्यता नहीं है, मैं अधम व्यक्ति हूँ, निकृष्ट व्यक्ति, फिर भी आप कृपा करके मुझे अपने साथ लाए और फिर मुझे ये सेवा प्रदान की, आपके लिए भोजन बनाने की सेवा, और मेरी इस प्रकार की सेवा से आप संतुष्ट होकर अपने उस भोजन को ग्रहण किया और आनंद का अनुभव किया। तो यदि कोई भगवान के लिए भोजन बनाता है और उससे भगवान संतुष्ट होते हैं तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाती है उसके ऊपर, भोजन बनाने वाले के ऊपर। तो इसलिए जब कभी हम भगवान के लिए भोजन बनाए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा हमारी जीवा के लिए क्या स्वादिष्ट हो, भगवान को क्या स्वादिष्ट लगेगा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए भोजन बनाना हमारे लिए नहीं। और जब भगवान प्रसन्न होंगे उस भोजन से तो हम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे, सुख का अनुभव करेंगे। जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जब भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं तो सारा जगत संतुष्ट हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार जब पांडवगण वनवास कर रहे थे तो उस समय वो वन में रह रहे थे पांडवगण, और एक बार दुर्वासा मुनि आए थे कुरु राज दरबार, तो दुर्योधन ने उनका सत्कार किया दुर्वासा मुनि का। किंतु वो जानता था कि दुर्वासा मुनि कितने क्रोधी है, तो उसने एक योजना बनाई कि जिससे कि दुर्वासा मुनि पांडवों के पास जाए और पांडवगण जंगल में रह रहे हैं ये लोग दुर्वासा मुनि का सत्कार नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो दुर्वासा मुनि के क्रोध के भाजन बनाएंगे। ये सोचकर दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि से कहा कि हे मुनिवर, ये पांडवगण ये बहुत आपका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, ये बहुत पास में रह रहे हैं जंगल में, आप उनके पास जाइए, ये लोग बहुत प्रसन्न होंगे आपको प्राप्त होकर। और दुर्वासा मुनि जब चलते थे 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे, अकेले नहीं, इसलिए उनका आदर सत्कार करना इतना आसान नहीं था, सरल नहीं था। तो जानबूझ करके दुर्योधन ने उनको भेजा पांडवों के पास, और दुर्योधन को ये भी ज्ञान था कि द्रौपदी को एक वरदान प्राप्त था कि जब तक द्रौपदी खा नहीं लेती है तब तक कितने भी अतिथि आए उनका सत्कार वो कर सकते, किंतु वो खा लेने के पश्चात वो जितने भी अतिथि आएंगे उनका सत्कार नहीं कर पाए। तो उसने दुर्वासा मुनि को उस समय भेजा जब ये पांडवगण और द्रौपदी खा चुकी हुई, तो उसी समय दुर्वासा मुनि जाकर पहुंचे पांडवों के पास। जब पांडव लोग भोजन कर चुके थे और द्रौपदी भी खा चुके थे और पात्र को भी धो के रख दिया, तो जब दुर्वासा मुनि पहुंचे तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे किस प्रकार मुनि का आदर सत्कार करना है, उनका आदर सत्कार किया, उनको आसन प्रदान किया, उनका उनके चरण धोए, चरण जल अपने मस्तक पर छिड़के, फिर उनको भोजन के लिए निमंत्रित किया। ये अतिथि सत्कार का नियम है।